बिन रोए आंसू पार्ट 15। पूरा नॉवल सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और यूनिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस वक्त पर मिली जा सकें। शुक्रिया। बाबा ने रोजाना की तरह रेशमा से उसे नाश्ते के लिए बुलाया था। वो मना कर दिया करती थी मगर वो उसे बुलाना तर्क नहीं करते थे। हैरत और खुशी के मिले जुले एहसास से वो लोग उस वक्त दो चार हुए जब उनके बुलाने पर वो बहुत हिचकिचाए हुए अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। किसी की भी तरफ देखे बगैर उसने सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गई। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और निदामत फैली हुई थी। वो ना बाबा की तरफ देख रही थी और ना डैडी की तरफ। बाबा उसकी शर्मिंदगी महसूस करते हुए इस तरह जाहिर करने लगे जैसे इन दिनों में कुछ हुआ ही ना हो। आज तुम भी हमारे साथ सही से नाश्ता करो सबा, खाली दूध में भी कोई मजा है, उन्होंने उसके सामने ऑमलेट की प्लेट रखते हुए कहा। उसने प्लेट अपने सामने कर ली और ऑमलेट खाने लगी। डैडी गाहे बगाहे इसकी तरफ देख तो जरूर रहे थे लेकिन उन्होंने उसे मुखातिब नहीं किया था। छुट्टी का दिन था इसलिए ना बाबा और इर्तजा को ऑफिस जाने की फिक्र थी और ना मास को स्कूल की टेंशन। नाश्ता करते हुए अखबार सामने फैलाए इर्तजा मौस को अखबार के स्पोर्ट्स के सफ़े में से उसकी पसंद की खबरें पढ़कर सुना रहा था। वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तस्वीरें देखता हुआ इनके मुतल्लिक दी गई खबर सुनना चाहता था। इर्तजा दिल ही दिल में असल जुमला पढ़ते हुए उसे आसान लफ्जों में ऐसा कि वो उसे समझ सके बनाते हुए सुनाने में मसरूफ था। इर्तजा उसे देखकर किसी किस्म की हैरत या खुशी का इजहार किए बगैर मौज के साथ मसरूफ रहा। बाबा अलबत्ता सबा की तरफ पूरी तरह मुतवजा थे। मुतवजा तो डैडी भी थे लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहे थे। क्या ख्याल है आप सब लोगों का, आज कहीं घूमने न चले? नाश्ता खत्म करके सब उठने वाले थे जब इर्तजा ने बेत वक्त सबको मुखातिब किया। चलिए बाबा, सबसे पहले जवाब मौस को ही देना चाहिए था और उसी ने ही दिया था। क्या ख्याल है तुम्हारा सबा, मूड है तुम्हारा चलने का? इर्तजा ने राह रास उसे मुखातिब किया अपनी इसी टून में जिसमें वो उससे बात किया करता था। इसने जवाबन सर हिला दिया। बाबा को हैरत का शदीद झटका लगा। एक ही रात में क्या काया पलट गई, वो हैरान थे। रात में सबा ने बाप से कितनी बदतमीजी की थी, बाबा को वो बात अच्छी तरह याद थी। मौज और सबा की तरह बाबा भी जाने के लिए तैयार हो गए लेकिन डैडी का जाने का कोई मूड नहीं था। वो तफ्री के नाम से बेजार नजर आ रहे थे। तुम लोग जाओ इर्तजा, मेरा मूड नहीं है, वो मना करते हुए कुर्सी पर से उठने लगे तो वो आहिस्ता आवाज में बाबा से मुखातिब हुई। डैडी आप भी चलिए ना, उसकी नजरें टेबल पर जमी थी लेकिन वो मुखातिब उनसे थी। अब तो चलो, और कितनी मिन्नतें करवाओगे? बाबा ने उन्हें मसनूई खौफगी से घूरा। उनकी आंखों में इशारा था कि वो पहले ही बहुत शर्मिंदा नजर आ रही है, उसे मजीद शर्मिंदा मत करो। डैडी उनकी बात मानते हुए जाने के लिए तैयार हो गए लेकिन उनका जाने का दिल अभी भी नहीं चाह रहा था। सबा की रात की बातों से उन्हें सख्त तकलीफ पहुंची थी। क्या वो अब उसे बिठाकर ये बताएं कि उन्हें उससे बहुत मोहब्बत है, अपनी जान से भी ज्यादा? अपनी जान के बदले भी अगर उन्हें इसके लिए खुशियां खरीदनी पड़े तो वो खरीद कर ले आए। ارتضا اور معاذ جلدی جلدی جانے کی تیاریاں کر رہے تھے. معاذ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنا بیٹ بال فٹ بال اور دیگر کھیلنے کا سامان گاڑی میں رکھ رہا تھا. وہ بے تحاشا خوش تھا. وہ سب گاڑی میں بیٹھے تو اسے گاڑی میں فاسٹ میوزک چاہیے تھا. تھوڑی دیر رہیں گے سمندر, پھر اس کے بعد ہم لوگ کسی اچھی سی جگہ پر لنچ کرنے جائیں گے. تمہیں بتا رہا ہوں معاذ, جب واپس چلنے کا کہوں تو فوراً مان جانا. ارتضا نے کیسٹ لگاتے ہوئے اسے وارننگ دی تو اس نے جھٹ سے گردن ہلا دی. وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر معاذ کے برابر میں بیٹھی تھی. وہ چہرے پر حیرت کا بہت واضح تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا. اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر رہا تھا, لیکن وہ اس سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. آپ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں گی؟ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیلتی. تم بابا لوگوں کے ساتھ کھیلنا, میں تمہیں کھیلتے ہوئے دیکھوں گی. اس نے بغیر چھڑکے اس کی بات کا جواب دیا. اگرچہ لہجے میں شوخی اور شرارت نہیں تھی جو اس سے بات کرتے وقت خود بخود پیدا ہو جایا کرتی تھی, لیکن سختی بھی نہیں تھی. وہ لوگ ساحل پر آ گئے. بابا اور ارتضا معاذ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے. جتنی تیزی سے معاذ کے موڈ تبدیل ہو رہے تھے, اتنی تیزی سے ان کے کھیل بھی تبدیل ہوتے جا رہے تھے. اسے تھوڑی ہی دیر میں بہت زیادہ کھیل کھیلنے تھے. ڈیڈی بابا اور معاذ کے بلانے پر بھی کھیلنے کے لیے نہیں اٹھے تھے. میں اور سبا تماشائی ہیں, انہوں نے معاذ سے کہا. وہ ان لوگوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور وہ ان کے برابر میں بیٹھی خود ان کو. اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان سے معافی مانگے. وہ بس خاموشی سے انہیں تکے جا رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ بہت انمول اور بہت قیمتی ہے. اگر ایک بار کھو جائے تو پھر دنیا کی بھیڑ میں دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا. وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے, مگر پھر بھی اس کے احساسات سے بخوبی آگاہ تھے. باپ تھے اس کے. اس کی شرمندگی اور آنکھوں کے التجا بغیر دیکھے بھی محسوس کر سکتے تھے. وہ اس انتظار میں بیٹھ نہیں سکتے تھے کہ وہ معافی مانگے گی تو میں تب ہی معاف کروں گا. بغیر کچھ کہے انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. ان کے اس طرح کرنے سے اس کی ہمت بندھی تھی. ڈیڈی, اگر میں آپ سے معافی مانگوں تو کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ میں تمہیں بغیر معافی مانگے بھی معاف کر دوں گا. کر دوں گا کیا, کر دیا ہے, وہ جواباً سنجیدگی سے بولے. میں تم سے ناراض نہیں تھا. لیکن بیٹی سبا, مجھے اس بات کا دکھ ہوا تھا تمہاری باتوں سے, لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب کی بار وہ ہلکا سا مسکرائے بھی تھے. تمہیں کیسا لگ رہا ہے سبا؟ سب کے ساتھ آنا, گھومنا, انجوائے کرنا. انہوں نے اس کی طرف دیکھا. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ڈیڈی, وہ بھی مسکرائی. مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے ہماری زندگیوں کی اداسی اور مایوسی کی جگہ اچانک ہی خوشی اور امید نے لے لی ہے. ماما کے بعد وہ کتنے تنہا ہو گئے تھے سبا اندازہ کر سکتی تھی. ارتضا نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے واپسی کا اعلان کیا تو معاذ وعدہ کر لینے کی وجہ سے بغیر منہ بنائے اور روئے واپسی کے لیے مان گیا. ورنہ دل تو ابھی بھی نہیں چاہ رہا تھا واپس جانے کا. بابا کا کہنا تھا اب یہ حلیے کسی ہوٹل یا ریسٹورینٹ میں جانے والے نہیں ہیں, اس لیے لنچ گھر پر ہی جا کر کیا جائے. ارتضا نے راستے میں گاڑی روک کر برگرز اور بروسٹ وغیرہ لے لیے تھے. گھر آ کر نہانے اور کپڑے بدلنے کے بعد فوراً ہی سب کھانا کھانے بیٹھ گئے वो बहुत ज्यादा नहीं बोल रही थी, लेकिन वो सबके साथ शरीक थी। उसे खुद से ये एतराफ करना पड़ा कि उन सबके चेहरों का ये इत्मीनान और ये खुशी उसके लिए बहुत मायने रखती है। लंच के बाद भी वो बाबा और डैडी के साथ बैठी रही। इर्तज़ा अपने कमरे में गालबन सोने के लिए चला गया था, जबकि मौज़ अपनी खेलों और शरारतों में मसरूफ था। वो दोनों पिछले तमाम दिनों की किसी बात का हवाला दिए बगैर उसके साथ इधर उधर के मौजूआत पर गुफ्तगू कर रहे थे। वो बोल कम रही थी, सुन ज्यादा रही थी। रात के खाने के बाद वो इर्तज़ा और बाबा के सोने के लिए चले जाने के बाद भी डैडी के साथ लाउंज में बैठी रही। इसने अपने और उनके लिए चाय बनाई। चाय पीकर जब वो अपने कमरे में जाने के इरादे से उठे तो वो भी उनके साथ उठ गई। वो दोनों सात सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आए। डैडी का कमरा सबसे पहले और बिल्कुल सामने था। वो उसे प्यार करके शब बखैर कहते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोलने लगे तो उन्हें हैरत का शदीद झटका था। वो दरवाजा खोलते हुए यूं ही बेदिहानी से उसे देख रहे थे कि उसको अपने कमरे के बजाय इर्तज़ा के कमरे की तरफ जाता देखकर उन्हें चौंक जाना पड़ा। वो दरवाजे पर हाथ रखे इंतहाई बेयकीनी से उसे देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद जब वो खुद को यकीन दिलाने में कामयाब हुए तो उन्होंने अपने दिल में ऐसी खुशी पैदा होती पाई जो बहुत अरसा से दिल से रूठी हुई थी। इर्तज़ा ने ऐसा इससे क्या कहा कि वो अचानक ही बदल गई। वो नहीं जानते थे, लेकिन इतना तो जानते थे कि जिंदगी में सब कुछ अगर ठीक नहीं भी हुआ था तो ठीक होना शुरू हो गया था। वो दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर अंदर आने पर सख शर्मिंदा थी। इर्तज़ा ने दरवाजा खोलने की आवाज पर किताब पर से नजरें हटाकर फौरन सामने देखा था। वो दरवाजे के पास ही रुक गई थी। उसने अपने कदम मजीद आगे नहीं बढ़ाए थे। वो बहुत घबराई हुई और नर्वस लग रही थी। वो इसकी घबराहट और शर्मिंदगी फौरन महसूस कर गया। आओ बैठो सबा। उसके चेहरे पर बहुत खुशगवार सी दोस्ताना मुस्कुराहट उभरी। वो उसके कहने के बावजूद आगे नहीं बढ़ी थी। वो ना उसकी तरफ देख रही थी और ना कमरे की तरफ। वो सर झुकाकर अपने पैरों को घूर रही थी। बैठ जाओ सबा, उसने दोबारा बड़ी नरमी से उसे मुखातिब किया। वो इसकी परेशानी और घबराहट समझ सकता था। उसे उसके हाथों की लर्जिश भी बहुत वाजिया नजर आ रही थी। उसने अपनी घबराहट छुपाने के लिए दोनों हाथ आपस में जगड़े हुए थे, लेकिन उनकी वो खफीफ सी कपकपाहट उसकी निगाहों से मख्फी नहीं रह सकी थी। वो उसे इस उलझन और परेशानी से निकालने के लिए मुस्कुराते हुए पूछने लगा, कहाँ पर सोगी तुम? ऐसा करो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। कल तक फिर तफसीली गौर व फिक्र करके मैं इस मसले का कोई मुस्तकिल हल तलाश कर लूंगा। ये जैसे कोई बहुत ही आम सी सिचुएशन थी और वो उसे बड़े हल्के फुल्के और पुरसकून अंदाज में ले रहा था। मैं आपकी स्टडी में सो सकती हूँ? इसने इसी तरह सर झुकाए हुए धीमी आवाज में पूछा। इसने एक बार फिर उसकी तरफ नहीं देखा था। स्टडी में? लेकिन उसे फौरन ही इस बात का ख्याल आ गया था कि उसे इसकी किसी बात पर एतराज नहीं करना। ठीक है, फिर यूं कर लेते हैं कि स्टडी में मैं सो जाता हूँ, तुम कमरे में सो जाओ। वो किताब बंद करते हुए उठा। नहीं, मैं स्टडी में ही सोऊंगी। इसके लहजे में अचानक ही जिद पैदा हो गई थी। लेकिन तुम वहाँ पर कैसे सोओगी सबा? वहाँ सोने की जगह कहाँ है? और फिर वैसे भी ये बहुत बुरी बात है कि मैं इत्मीनान से बेड पर सोऊं और तुम स्टडी में बेआराम रहो। ये सोच लेने के बावजूद कि उसे सबा की किसी बात पर एतराज नहीं करना, वो इस बात पर खुद को एतराज करने से रोक नहीं पाया। मुझे कोई बेआरामी नहीं होगी, वो बेलचक और दो टोक अंदाज में बोली। अच्छा ठीक है, जैसे तुम खुश। वो बहस तर्क करके हार मानने वाले अंदाज में बोला। उसने स्टडी की तरफ कदम बढ़ाए तो वो बेसाख्ता उसे आवाज देने पे मजबूर हुआ। ये तो ले जाओ। उसने बेड से तकिया और चादर उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। इसने खामोशी से वो दोनों चीजें ले ली थी और फिर मजीद 8 सेकंड भी वहाँ रुके बगैर कमरे से मुहल्लिक स्टडी पे चली गई। ये इर्तजा की साथी स्टडी थी। इसका एक दरवाजा इसके कमरे में खुलता था और एक बाहर को। वो बहुत सालों बाद यहाँ आई थी। यहाँ का पूरा नक्शा उसे बदला हुआ नजर आया। आखिरी बार शायद वो उसे यहाँ पर कॉफी देने आई थी, इस वक्त जब समन और इर्तजा की मंगनी भी नहीं हुई थी। स्टडी के बीचों बीच कारपेट पर तकिया और चादर रखकर वो लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो खुद को ये बात याद दिलाकर कि अभी थोड़ी ही देर पहले इसके इस इक्तदाम ने डैडी को किस कदर खुशी दी थी, नींद को बुलाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई थी। सुबह इसकी आंख खुली तो थोड़ी देर वो यूं ही लेटी स्टडी की दीवारों और छत को घूरती रही। वो अजीब से एहसासात से दो चार हो रही थी। इस तब्दीली को कबूल करना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। वो तकिया और चादर उठाकर स्टडी से निकलकर कमरे में आई तो कमरा खाली पड़ा था। उसे वहाँ से इर्तजा की गैर मौजूदगी बड़ी अच्छी सी लगी। बाहर आते ही यूं लगा जैसे इसे किसी कैद से रिहाई मिली है। बाबा और डैडी लाउंज पे बैठे अखबार का मुतालिया कर रहे थे, आपस में मुख्तलिफ खबरों पर तबादला ख्याल भी कर रहे थे। वो इन दोनों को सलाम करते हुए किचन में आ गई। आज बहुत दिनों बाद, बल्कि एक तवील अरसा बाद, इसका अपने घर वालों के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाने का दिल चाह रहा था। रेशमा उसे किचन में आते और फिर इतनी फुर्ती से काम करते देखकर बड़ी खुश नजर आ रही थी। आज घर में बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी रौनक लग रही है। वो कुछ झिझकते हुए अपने दिल की बात इससे कह गई थी। वो मुस्कुराते हुए उसे साथ लगाए नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थी। रेशमा से नाश्ता लगवाते हुए इसने नदीम से सबको बुलाकर लाने को कहा। वो किचन से निकलकर ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ सब आ चुके थे। आज तो किचन से खुशबुएं ही अलग तरह की आ रही हैं, बाबा उसे देखकर शोकी से बोले। आज नाश्ता मैंने बनाया है, वो जवाबन मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गई थी। तुम ना भी बताती तब भी लाउंज में बैठे हुए मुझे सिर्फ खुशबू ही से पता चल गया था कि आज किचन में किसने रौनक बख्शी है, वो शरारती मूड में था। सबा के पकाए हुए खानों में कुछ अलग ही खुशबू होती है बाबा, इर्तजा ने अखबार से नजरें हटाकर उन्हें देखा। सिर्फ सबा के खानों में नहीं, बल्कि हर बेटी के, माँ के, बहन के, बीवी के खानों की खुशबू ऐसी ही होती है। ये खुशबू तो रिश्तों की है, उनकी तैयारी में मेहनत के साथ साथ मोहब्बत भी शामिल होती है। ये खुशबू मोहब्बत की खुशबू है। उन्होंने प्यार भरी निगाह सबा पर डाली। बाबा, आपने सुबह सुबह अदबी किस्म की गुफ्तगू करना शुरू कर दी है। बाय द वे बाबा, जिनके घरों की खवातीन फोड़ होती हैं, क्या उनके किचन में भी मोहब्बत की यही खुशबू आती है। इर्तजा बाबा को छेड़ रहा था। डैडी इसकी बात पर कहका लगाकर हंस पड़े। बाबा के लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। अपने कमरे में आकर इर्तजा सबसे पहले ड्रेसिंग रूम में आया था। इस कमरे के कोने कोने में समन की चीजें बिखरी हुई थीं। इसके कपड़े, इसके मेकअप का सामान, इसकी ज्वेलरी और दीगर बहुत सी अशिया। समन की इस्तेमाल की इन तमाम चीजों में से किसी एक चीज को भी इसने कभी यहाँ से हटाने के बारे में नहीं सोचा था। वार्डरोब खोलकर उसने इसमें से समन के सब कपड़े बाहर निकाल लिए थे। ऐसा करते हुए इसके दिल को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसे समन के सामने कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो जानती है ये बात कि इर्तजा ऐसा इन सब लोगों की खातिर कर रहा है जिनसे खुद समन को भी बहुत प्यार था। मामा, डैडी, बाबा, सबा, जफर और मौस, इसने वहाँ सबा के कपड़ों के लिए जगह कर दी थी। रेशमा को बुलाकर उसने ड्रेसिंग टेबल पर समन के मेकअप का सामान हटवा दिया था। इस काम से फारिग होकर इसने गेस्ट रूम में रखा हुआ सोफा कम बेड अपनी स्टडी में लाकर रख दिया। इस काम से फारिग होकर वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। लंच टाइम हो चुका था, लेकिन इसका खाना खाने के लिए घर पर रुकने का कोई मूड नहीं था। सिर्फ 10 मिनट में वो तैयार होकर पोश में आ गया। सबा को बता देना मैं ऑफिस चला गया हूँ, गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने नदीम से कहा। मौस स्कूल से आकर सीधा इसके पास आ गया। बाबा और डैडी घर पर नहीं थे, इसलिए वो अपने कमरे में थी। मौज ने हस्बे आदत सबसे पहले उसे अपने स्टार्स दिखाए, फिर उसके बाद आज म्यूजिक की क्लास में क्या क्या हुआ सुनाना शुरू कर दिया। वो अगर बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेकर इसकी बात सुन नहीं रही थी, लेकिन उसे झिड़का भी नहीं रही थी। खाला जानी, आप मेरी मामा बन गई है ना? मौज के सवाल पर उसे करंट सा लगा। वो पूरी की पूरी हिल गई। तुमसे किसने कहा मौज? इसके मुंह से बहुत मरी हुई आवाज निकली। मुझे जफर मामू ने बताया था और बाबा ने भी, उसने सादगी और मासूमियत से जवाब दिया। मौज, तुम्हारी मामा समन है, तुमने देखी है ना उनकी तस्वीरें और मूवीज। बजाय गुस्से से वो उसे नरमी से समझाने लगी। हाँ वो तो है, लेकिन उन्हें अल्लाह मियाँ ने अपने पास बुला लिया है, इसने झट से जवाब दिया। आपकी पापा के साथ शादी होगी है ना? वो उससे भी ज्यादा बड़े बड़े सवाल और मुश्किल सवालात करने की सलाहियत रखता था। 21वीं सदी के इस बच्चे से वो किसी भी सवाल की तवक्का कर सकती थी, वो उसे झुटला नहीं सकती थी। इसे इकरार में गर्दन हिलानी पड़ी। मैं आपको मामा बुलाया करूं? वो अपने असल सवाल की तरफ आ गया। नहीं, अब की बार इसके जवाब में सख्ती शामिल हो गई थी। स्कूल से आकर सबसे पहले मुंह हाथ धोकर यूनिफॉर्म बदलना चाहिए, बाकी सारी बातें इसके बाद होनी चाहिए। जाओ जाकर अनीता आंटी से मुंह हाथ धुलवाकर यूनिफॉर्म बदलो, वो इसके लहजे में मौजूद सख्ती महसूस करके वहाँ से उठ गया। मामा, मौज मुझसे डांटे खाने के लिए तन्हा रह गया है, समन भी नहीं है, आप भी नहीं है। मैं इसके पास होते हुए भी इसके पास नहीं हूँ, वो गवर्नेंस के रहमो करम पर रह रहा है। उसे इस वक्त कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी। वो सोफे पर यूं ही बैठी रहती। अगर बाबा और डैडी अंदर ना आ गए होते तो उन्हें देखकर उसे मुस्कुराना पड़ा। कुछ परेशान लग रही हो बेटा, डैडी ने पता नहीं कैसे इसकी परेशानी महसूस कर ली। मॉस की शॉपिंग करनी है डैडी, इसके पिछले सीजन के सब कपड़े छोटे हो गए हैं। वो इन्हें संजीदगी से बताने लगी तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, इतनी सी बात पर परेशान हो मेरी बेटी, चलो अभी चले चलते हैं मॉस के लिए कपड़े खरीदने। आप अभी थके हुए आए हैं। इसने इनकार तो किया लेकिन इसमें ज्यादा शिद्दत नहीं थी, यानी उसे उनकी थकन की फिक्र थी और वो जाना भी चाहती थी।
थकन का क्या है, अभी एक कप चाय पीऊंगा और बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगा।
वो खुलकर मुस्कुराए। बाबा और डैडी लिबास बदल कर दोबारा लाउंज में आए तो इतनी देर में वो उनके लिए चाय बना चुकी थी। वो दोनों इसके रवैये में पैदा होती मुस्बत तब्दीलियों पर बेहद खुश नजर आ रहे थे। बाबा ने ऑफिस में मौका मिलते ही इर्तजा से वो जादुई इसम भी पूछा था जो इसने सभा पर पढ़कर फूंका था। इसके शरारती अंदाज पर उसने मुस्कुराते हुए इन्हें बताने से इनकार कर दिया। मॉस लॉन में खेलकर अंदर आ चुका था। इसने शॉपिंग पर जाने का सुना तो खुद भी जाने के लिए तैयार हो गया। वो अब बाबा के चाय खत्म करने का मुंतजिर था। इर्तजा घर वापस आया तो बजाय अपने कमरे के जाने के लाउंज में सब लोगों के साथ बैठ गया। इर्तजा सही टाइम पर आ गया है, अब मेरे जाने की क्या जरूरत है, तुम तीनों चले जाओ। बाबा चाय का कप ट्रे में रखते हुए उससे बोले। उसे बाबा की इस बात से सख्त कोफ्त हुई। खुद पर भी गुस्सा आया कि बाबा के सामने ये मसला रखने की क्या जरूरत थी। किसी से कुछ कहे बगैर वो कल दिन में ड्राइवर के साथ जाकर शॉपिंग कर सकती थी।
कहाँ जाना है,
इर्तजा ने बाबा की बात सुनने के बाद सवाल उनसे पूछा। मॉस की शॉपिंग करनी है सबा को, उससे पहले जवाब में ही बाबा ने उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया।
चलो, वो फौरन उठ गया।
चाय वाय पी लो, थोड़ा आराम कर लो, बाबा के कहने पर वो नफी में सर हिलाते हुए बोला।
चाय अभी ऑफिस से उठने से थोड़ी देर पहले ही पी थी, अब मूड नहीं है।
वो अब किसी भी तरह जाने से इनकार नहीं कर सकती थी, उसे जाने के लिए उठना पड़ा। मौज उन दोनों से भी पहले भागता हुआ पोर्च में चला गया था। वो समन से शादी के बाद बेशुमार मर्तबा इसके साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी थी, कभी वहाँ बैठना उसे बुरा नहीं लगा था। आज इस सीट का दरवाजा ही इसकी तरफ खुला तो वो बहुत वक्तों से बैठ गई। इर्तजा उसके बैठने का मुंतजिर था। वो वहाँ बैठी तो उसे इर्तजा से, मौज से, अपने आप से, दुनिया की हर चीज से नफरत होने लगी। शॉपिंग के लिए उसका सारा शौक यकदम खत्म ही हो गया। इर्तजा इससे दो मर्तबा ये बात पूछ चुका था कि कहाँ चलना है और वो जैसे इसकी आवाज ही नहीं सुन रही थी।
हाला जानी, पापा आपसे बोल रहे हैं,
मौस पीछे से जोर से चलाया तो वो चौंकी। इर्तजा ने अपना सवाल दोहराया।
कहीं भी,
वो बेदिली से बोली। इर्तजा ने उससे मजीद कुछ नहीं पूछा था, वो खामोशी से ड्राइव करता रहा। बाजार आकर भी उसकी बेजारी और लातालुकी खत्म नहीं हुई थी। इर्तजा खामोशी से उसके साथ चल रहा था।
बस करें, अब मैं बोर हो गया हूँ, इसकी शॉपिंग खत्म ना होती देखकर मौज ने कहा।
उसे अब कपड़ों और जूतों की दुकानों में मजीद कशिश नजर नहीं आ रही थी। मौज की वजह से उसने मजीद खरीदारी का इरादा मुतलवी कर दिया। इर्तजा को गाड़ी की तरफ जाता देखकर वो उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए एक दुकान की तरफ ले जाने लगा।
मुझे क्रियॉन स्टिक्स चाहिए,
वो उसे हाथ पकड़कर अपनी मतलूबा दुकान पर ले आया। वो दोनों उसके साथ वहाँ आ गए। वहाँ आकर वो मजीद चीजें खरीदने के लिए बेकरार हुआ था। उसे पोस्टर कलर्स भी चाहिए थे, रंगीन पेंट्स भी चाहिए थे, वाटर कलर भी चाहिए थे। इर्तजा वो सब चीजें खरीद रहा था। मौज इसकी खरीदारी पर पहले वाली चीजों के मुकाबले में कहीं ज्यादा खुश नजर आ रहा था। इसने वहाँ से अलम गलम ढेर सारी चीजें खरीदी थी।
सबा, मौज का ये शौक बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, दुकान से निकलते हुए वो बेसाख्ता सभा से बोला। उसे सभा के लिए ऐसी बहुत सी चीजें खरीदना अचानक ही याद आ गया। उसे भी तो मौस की तरह ही का शौक था, रंग बिरंगे पेन, पेंसिल्स, मार्कर्स, कलर्स, पेंटिंग्स जमा करने का। वो जवाबन खामोश रही। मौस को आइसक्रीम खिलाकर वो लोग घर वापस आ गए। डैडी फोन पर किसी से बात कर रहे थे और बाबा वहीं बैठे टीवी देख रहे थे। इन दोनों ने इन तीनों को अंदर आते हुए बड़े गौर से देखा था। कितने अच्छे लग रहे थे वो लोग एक साथ आते हुए। मौस उनके कहने से पहले शॉपिंग बैग में से उन्हें अपनी खरीदारी दिखा रहा था, अपने कलर्स और पेंसिल्स वगैरह। बाबा इसकी सब चीजें बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। डैडी भी फोन बंद करके इन लोगों की तरफ मतवजा हो गए थे। वो बाबा का शौक देखते हुए इन्हें मौस के खरीदे गए कपड़े दिखाने लगी। और तुमने क्या खरीदा? वो सब कुछ दिखाकर कपड़े वापस डब्बों और थैलियों में रखने लगी तो बाबा ने फौरन पूछा,
मैंने?
वो अपनी तरफ इशारा करके हैरान हुई।
मुझे अपने लिए कुछ नहीं खरीदना था बाबा।
उसका जवाब सुनकर उन्होंने इर्तजा की तरफ खुफगी से देखा। तुमने सभा को शॉपिंग नहीं करवाई?
इसने कहा ही नहीं।
वो बाबा के खुफगी पर शर्मिंदा हुआ। अब वो इन्हें क्या बताता कि वो इसके साथ शॉपिंग पर जाना ही नहीं चाहती थी। वो इसके साथ गाड़ी तक में बैठना नहीं चाहती थी। इसकी कराई हुई शॉपिंग को वो किस तरह कबूल कर सकती थी?
भाई वाह, क्या बात है।
वो इर्तजा के जवाब पर मजीद खुफगा हुए।
उसने कहा नहीं, इसलिए तुमने उसके लिए कुछ खरीदा ही नहीं।
वो अपने लिए कब कुछ बोलती है? मेरी बेटी मासूम और सीधी सादी है। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम इसकी सादगी का नाजायज फायदा उठाओ।
आप खफा तो मत हो।
अच्छा, मैं सभा को कल साथ ले जाकर ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा। वो उनका गुस्सा खत्म करने के लिए फौरन वादा करने लगा।
मेरे कहने से ना, खुद से तो तुम्हें ख्याल नहीं आता।
वो गुस्सा थे। वो बगैर बुरा मानने बाबा से सॉरी कहने लगा। वो मौस की चीजें वापस थैलों में डालते हुए ये गुफ्तगू सुन रही थी। रात के खाने के बाद इत्तेजा कमरे में जल्दी चला गया। वो बहुत देर बाद कमरे में आई थी। वो बेड पर नींद दराज टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो बिल्कुल नहीं चौंका था। इसकी निगाहें इसी तरह स्क्रीन पर मरकूज थीं। इसने न टीवी पर से नजरें हटाई थी और न उसे मुखातिब किया था। वो इसी तरह मूवी देखने में मगन रहा। वो खुद भी वहाँ एक सेकंड रुके बगैर बड़ी तेजी से स्टडी में चली गई थी। उसने स्टडी में पैदा हुई तब्दीली को गौर से देखा। उसे कारपेट पर लेटने में भी कोई मसला नहीं था। अब ये सहूलत फराहम की गई है तो उसे इस पर भी कोई एतराज नहीं हुआ था। दूसरे दिन शाम में ऑफिस से आकर वो उसे पूछने लगा,
चलना है शॉपिंग के लिए?
वो मौस को होमवर्क करते हुए देख रही थी। इसकी तरफ देखते हुए इसने फौरन इनकार में गर्दन हिला दी।
देख लें बाबा, आप मैं इससे अब शॉपिंग के लिए कह रहा हूँ, ये मना कर रही है, फिर आप मुझे कुछ मत कहिएगा।
इसने कुछ फासले पे बैठे बाबा से बाआवाज शिकायती लहजे में कहा। वो डैडी के साथ गुफ्तगू में मसरूफ थे। इसकी शिकायत पे उन्होंने दोनों की तरफ देखा।
अब नहीं है उसका मूड तो क्या वो जबरदस्ती जाए?
उन्होंने फिर सभा की तरफदारी की। इर्तजा बेसाख्ता हंस पड़ा था।
वैसे सभा, मना करके तुमने अच्छा नहीं किया। यही तो मौका था इसकी जेब खाली करवाने का। और देखना, अब ये जल्दी जल्दी बल्कि रोजाना तुमसे शॉपिंग पर जाने के लिए कहा करेगा। ये सोचकर के सभा ने तो इनकार ही कर देना है।
वो अब सभा से मुखातिब थे। डैडी भी उनके शरारती अंदाज पर हंसने लगे थे।
बेफिक्र रहें बाबा, मैं अगली बार इंतजार नहीं करूंगा। इसने मुस्कुराते हुए उन्हें यकीन दिलाया। इर्तज़ा उन सबको गुफ्तगु करता छोड़कर अपने कमरे में चला गया। अपने घर का ये माहौल कितना अच्छा और मानूस सा लग रहा था। जिंदगी में बज़ाहिर सब कुछ ठीक हो गया था। बाबा और डैडी के सामने वो दोनों आपस में बहुत बातें करते थे, बिल्कुल पहले वाले अंदाज में। और कमरे में आकर वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हो जाया करते थे। इर्तज़ा को अपने किसी दोस्त के यहाँ डिनर पर जाना था। सुबह नाश्ते की मेज पर उसने सरसरी से अंदाज में इस बात का जिक्र किया था,
तुम सबा को अपने साथ किसी डिनर और पार्टी पे नहीं ले जाते?
बाबा चाय का कप उठाते हुए उससे बोले,
इसका मूड ही नहीं होता जाने का, इसलिए मैं पूछता भी नहीं।
इसने इतने इत्माद से झूठ बोला जैसे ये मौजू बड़ी तफसील के साथ इसके और सबा के दरमियान जेर बहस आ चुका। इसमें कोई शक नहीं था कि इसकी पास आने वाली अक्सर दावत नामों में दोबारा से मिसिस इर्तज़ा गजनफर का इजाफा हो चुका था। इसके करीबी दोस्तों के अलावा कारोबारी हवाले से मिलने वाले इन्विटेशन में भी इसके साथ साथ इसकी मिसिस का बुलावा भी एक दफा फिर आने लगा था।
सबा, ये दो लोगों से मेल जोल से बेजारी और दुनिया से कटकर रहने वाला रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं है बेटा।
बाबा अब उससे मुखातिब थे, वो खामोशी से उनकी नसीहत सुन रही थी।
बिजनेस डिनर्स और पार्टीज में चाहे ये जाए ना जाए, लेकिन तुम अपने दोस्तों के हाँ तो इसे साथ ले जाया करो,
नहीं जाती तो जबरदस्ती लेकर जाओ, तुम्हें शोहरों वाला रोब जमाना भी नहीं आता।
वो जैसे इर्तज़ा को इसके साथ सख्ती से पेश आने के लिए उकसा रहे थे।
बाबा आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं,
इसने बाबा की तरफ अफसोस से देखा।
ऐसी हरकतें करोगी तो तुम्हारे खिलाफ बोलना पड़ेगा, जरा देखो क्या हालत बनाई हुई है अपनी, ना कपड़ों का ख्याल, ना मेकअप, ना सजना, ना सवरना, ना ही कोई ज्वेलरी। घर से निकलोगी तब भी तो तुम्हारा हुलिया सही होगा, सारा दिन घर पर रहती हो, ना कहीं जाती हो, ना किसी से मिलती हो। वो इसकी तरफ देखते हुए नाराजगी से बोले,
भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सबा, तुमने अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म कर दी है, जरा भी सोशल नहीं रही अब तुम, ना फैमिली में कहीं जाती हो, ना अपनी फ्रेंड्स में। तुम्हारी दोस्त खुद ही भोले भटके फोन कर लें तो बात कर लोगी, खुद से तो मेरा ख्याल है तुमने अरसा से किसी दोस्त को फोन नहीं किया। ये यक तरफा कार्रवाई भी कब तक चलेगी? आखिरकार एक रोज तंग आकर वो लोग तुम्हें फोन करना भी छोड़ देंगे।
डैडी भी बाबा के हमायत में बोले थे।
इर्तज़ा खामोशी से चाय पीते हुए सबा को की जाने वाली नसीहतें सुन रहा था।
सबा आज तुम्हारे साथ जाएगी इर्तज़ा,
बाबा इर्तज़ा से हुक्मिया अंदाज में बोले। वो अब मजीद कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसलिए खामोश हो गई थी। इसकी तैयारी किसी पार्टी या डिनर में जाने वाली तैयारी नहीं थी। इसने ना मेकअप किया था और ना किसी किस्म की ज्वेलरी पहनी थी, सिर्फ बाबा के पहनाए हुए कंगन जो उसने उतारे नहीं थे वो पहने हुए थे, और गले में चेन जो हमेशा से उसने पहनी हुई थी। मौज घर पर बाबा और डैडी के पास रुक गया था, सिर्फ वो दोनों जा रहे थे। इर्तज़ा ने गाड़ी रिवर्स करके जैसे ही घर से बाहर निकाली, वो इसकी तरफ देखे बगैर स्पॉट अंदाज में बोली,
मुझे डिनर पे नहीं जाना, आप मुझे मेरी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर दें, वापसी पे मुझे वहीं से पिक कर लीजिएगा,
वहाँ भी बहुत अच्छी गैदरिंग होगी सबा, तुम इंजॉय करोगी।
वो इसकी बात पर हैरान हुए बगैर मतनात से उसे समझाने लगा,
आपसे कहा था आप मुझे किसी बात के लिए मजबूर नहीं करेंगे।
बहुत सख्त लहजे में उसने उसे ये बात कही।
एड्रेस बताओ अपनी फ्रेंड के घर का,
इसने मजीद बहस किए बगैर फौरन ही बड़ी संजीदगी से पूछा। फिर उसी खामोशी से इर्तजा ने उसे उसके दोस्त के घर उतार दिया। सबा की यह हरकत उसे बहुत बचकाना और इमेच्योर लग रही थी, और सिर्फ यही हरकत ही नहीं, उसे सबा के बहुत से रवैये इमेच्योर लगा करते थे। इसमें इमेच्योरिटी की कमी थी, लेकिन अब उसे कुछ समझाने की पोजीशन में नहीं रहा था। वो खुद अपने रवैये में तब्दीली ले आए तो ले आए, इर्तजा उसे वाकई किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता था।
मजीद वीडियोस और स्टोरीज के लिए हमारा चैनल यूनिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।